ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चों को कितनी खुशी और नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा कि बाबा आते हैं बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोलियां भर भर के देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो आज सारी दुनिया के अंदर क्या हालत हो गई है, तपत है, गर्मी का महीना होगा। तो बाबा ने कहा वैसे भी आप देखते जब गर्म का महीना होता है, फिर से बताती हैं, आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक तो खुशी और नशे के लिए बताया। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियों से भरपूर करते हैं, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, परंतु माया भी कोई कम नहीं है। माया जब आती है तो ऐसा करती है कि बहुत बड़ा गोला लगा देती है। फिर बाबा ने कहा कि देखो दुनिया में कितनी तपत है, लेकिन आज मनुष्य के पास कौन सी तपत है, कौन सी गर्मी है, बेकारों की, काम बेकार की। लेकिन बाबा आकर के ज्ञान वर्षा से सबको शीतल करते हैं। वैसे भी देखते हैं जब बहुत गर्मी होती है, पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, अभी यहाँ का कूलर चलाया तो बहुत आवाज कर रहा था, लेकिन बाबा जो देते हैं ज्ञान बरसात करते हैं उसमें तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्राप्ति होती है, बहुत अनुभव होते हैं, आत्मा शीतल हो जाती है। तो बाबा कितनी खास सारी धरती जिसमें भारत को बाबा आकर के शीतल बनाते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 13 जून 2026। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। कौन सी तपत? विकारों की। मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने, ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। ज्ञान मिलता है, अवस्था कितनी अच्छी हो जाती है, शांत हो जाती है। तो बाबा कहते ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। आज का प्रश्न है कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है। इसका उत्तर है काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। कोई भी चीज अग्नि में डालेंगे ना तो काली हो जाती है। तो बाबा कहते सब काम अग्नि में जलकर काले अर्थात अपवित्र हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहेगी। यहाँ तो कितने प्रकार की तपत है, विकारों की है, लड़ाई झगड़े की है, दुखों की है। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं। तपते मीन्स दुख नहीं देते, कोई भी प्रकार से दुख नहीं होता, ना प्रकृति का न विकारों का, कुछ भी नहीं, कोई भी तपते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? बाबा जब आते थे क्लास में तो बाबा प्रश्न पूछते थे, बच्चे याद में तो बैठे हैं लेकिन किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूहानी बच्चे हैं तो किसको याद करेंगे? रूहानी बाप को। जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी हैं कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बना। बाबा आए और हमको ज्ञान की वर्षा करे कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाए, गाते हैं ना कि हमारी तपत बुझाओ, गाते भी हैं तपत बुझाए। तपत काहे की, बाप पूछ रहे काहे की, काम चिता की बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर जाते हैं। जब बहुत गर्मी होती है तो बाबा कहते मनुष्य मर जाते हैं, तो काम विकार में भी मनुष्य की हालत क्या हो जाती है? बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती, जब भी बारिश आती है कितना अच्छा मौसम हो जाता है। बाबा के टाइम पर ये मुरली जो चल रही है, गर्मी का टाइम भी है फिर बरसात को भी याद करते हैं ना। जब बरसात नहीं पड़ती है तो कितनी मेहनत करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती भी शीतल हो जाती है। ये तो बरसात है कौन सी? ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाती है, कितना? 21 जन्मों के लिए इतना सब कुछ दे देते हैं। तो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। सतयुग में तो नहीं रहता ना कि बारिश आए, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, गर्मी आ रहा है, वहां तो सब कुछ नेचुरल है। तो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, जो आप से लेकर के कितनी मनोकामनाएं हो जाती हैं, आदमी है, तूफान है, बरसात है, गर्मी है, तो बाबा कहती हैं आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो। बाबा आकर शीतल बनाओ, पतित पावन बाप आकर के हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अर्थात सारी दुनिया शीतल हो जाती है, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते। इस ज्ञान वर्षा से दो बातें, भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है और तुम क्या बने? शीतल मीन्स प्रकृति स्वतः प्रदान हो जाती है, कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है और तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इधर से कोई है आए? पीछे से आओ। पीछे जलने के बांस आए, कुछ जला है क्या? पंखा करो है? जलने के कुछ जलने के बांस आ रही है, देखना कुछ जला है क्या? कोई बिजली का शॉट ना हुआ, देखना। चलो, बाबा कहते ना ध्यान रखना है। तो मनुष्य मरते तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां अभी ध्यान से सुनेंगे सब, इधर उधर की बातों में नहीं। बाबा अभी सब बाबा की याद में प्यार से वो शीतलता का अनुभव करते रहे। बाबा कहते शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां न बरसात न किसी चीज की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता, सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। सूर्य भी दुख नहीं देता है, सतो प्रधान होता है, टाइम पर सूर्य निकलता है, टाइम पर वो सूर्य भी इतना नहीं देता जो कि इतनी अभी गर्मी होती है ना, तो बाबा कहते हैं सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते, बाहरी मौसम रहता है, सूर्य भी अपना लिमिट में रहता है, कभी तपत नहीं दिखाते, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तो गुलाम हो ना, प्रकृति के भी गुलाम है, हर चीज के गुलाम है, हर चीज की इच्छा रहती ना, तो बाबा कहते अभी तो तुम गुलाम हो ना, गाते हैं मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा, बाप को याद करते हैं। एक गुलाम संस्था भी बनी हुई थी जो गीत गाती रहती, भगवान को कहते मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा, तो बाबा कहते हैं बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, तुम्हारी सेवा में, अब क्या कहेंगे, बाबा तो कह देते हैं लेकिन हम बच्चे नहीं कहेंगे, बाबा कहते मैं तुम्हारी सेवा में तुम्हारा गुलाम बन के आता हूँ, बाबा भल कहे लेकिन हम बच्चे नहीं कहेंगे, बाबा तो हमारा मालिक है, बाबा से हमको सब कुछ मिलता है, बाबा हमारा माता पिता है लेकिन हमारा गुलाम नहीं है, बाबा प्यार से बच्चों की सेवा करते हैं लेकिन बाबा कितने निर्माणशील हैं, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में तुम्हारा गुलाम बनकर आता हूँ, तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। बाबा कितने प्यार से बच्चों की सेवा करते थे, एक एक बात सुनो तो बाबा ने कितना बच्चों को पाला है, कैसे एक एक की सेवा की है, मैं तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, पराए पतित देश और पतित शरीर में मैं आता, सेवा भी करता हूँ, किस में आता हूँ, पराए देश में, पतित देश में, पतित शरीर में आता हूँ, इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता, सतयुग को पावन और कलयुग को पतित कहा जाता है क्योंकि सब वेकारी हैं, भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। इस नॉलेज को कौन समझेंगे बताओ, भी कौन समझेंगे बोलो ना, हम बाबा के बच्चे, हम देवी देवता धर्म वाले, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही हम समझेंगे। बाबा कहते हैं भारतवासी इस नॉलेज को समझेंगे जिन्होंने 84 जन्म लिए, 84 जन्म वाले हाथ खड़ा करो, बाबा को बताओ, बस सब नॉलेज को समझते हैं, वही ये नॉलेज सुनेंगे, वह जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही ब्राह्मण बनेंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे, ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं, ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, ब्रह्मा बाप में बाबा शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते, कितनी अच्छी बात कि बाबा भी ब्रह्मा के द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाते, ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, ये तुम्हारी बाजोली चलती, बाजोली देखिए ना, सबने देखी होगी, जिसने नहीं देखी बात खड़ा करे, सबने देखी बाजोली है ना, ऐसे सिर के बल से घूमते रहते है ना, तो बाबा कहते ये तुम्हारी बाजोली चलती है, कौन सी, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र फिर ब्राह्मण देवता, तो ऐसे चक्कर चलते है ना, तो ये तुम्हारी बाजोली चलती है, ये तो बहुत सहज है, तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है, विराट रूप में ब्राह्मणों को चोटी और शिव बाबा को भूल गए, लौकिक में जो विराट रूप का चित्र बनाते ना उसमें ऊपर में ब्राह्मण नहीं दिखाते, शिव बाबा नहीं दिखाते, तो विराट रूप का चित्र तो सबने देखा हुआ होगा ना, जिसने नहीं देखा हाथ खड़ा करे, सबने देखा, जिसने ना देखा हो ना तो म्यूजियम में बहुत सुंदर विराट रूप का लाइट का ट्रांसलाइट का बनाया हुआ, बहुत सुंदर है। कैसे आत्माएं आती है, कैसे जाती है और लाइट चलती है, बहुत सुंदर है। कभी जाओ तो वहां भी देख सकते हैं। तुम्हारी बाजोली चलती है, ये तो बहुत सहज हो। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है? विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से देवता। ब्राह्मण बनते वो नहीं बताते, कैसे शिव बाबा आके ब्राह्मण बनाते हैं, कैसे देवता बनाते वो नहीं दिखाते। कहते हैं शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं, ब्राह्मण देवताएं नमः। कितनी अच्छी बात बार स्पष्ट की, ब्राह्मण गाते हैं ना, ब्राह्मण देवताएं नमः। ब्राह्मण ही जाकर के देवता बनते हैं। तब प्रजापिता ब्राह्मण की वंशावली कहाँ गई? ब्राह्मण नहीं दिखाते हैं तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्राह्मण की वंशावली कहाँ गई? प्रजापिता ब्राह्मण का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्राह्मण की औलाद का कोई नाम निशान नहीं। बाबा बताते हैं ब्रह्मा के बच्चे आप ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों हो, लेकिन शास्त्रों में चित्रों में नहीं बताते है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम एंड ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी। कभी चेक किया कि हमारी इनकम कितनी है? हम जाके विश्व के मालिक बनेंगे, देवी देवता बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। जो विश्व के मालिक बनेंगे वो हाथ खड़ा करें। अरे मालिक तो एक होगा, सब कहाँ बनोगे? लेकिन विश्व के मालिक तो है ना, वो हमारी ही राजधानी है। तो बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस रॉयल फैमिली में होंगे ना। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में ही गाया हुआ है 21 पीढ़ी, कहते ना 21 कुल का उद्धार करते हैं। तो बाबा कहते भारत में ही गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के भाव से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल, क्षण भंकुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। इतना बड़ा वर्षा जो चलता ही रहेगा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था, ये ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है। ये ज्ञान देने वाला बाबा क्या कहते हैं, ये ज्ञान देने वाला जाने और लेने वाले जाने। ये ज्ञान ऐसा देने वाला जानता और कौन जानते? हम बच्चे जानते। तो बाबा कहते ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिसको देते हैं वह जाने और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। क्या महिमा गाते हैं? एक ओंकार है, निराकार है, सतगुरु है, सच्चा है, सच है, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ग्रंथ में भी इनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार है, निराकार है, निरअहंकार है। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वो गाते रहते हैं है भी सच, होगा भी सच, सत्य है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें इसका अर्थ क्या है वो तुम बच्चे जानते हो। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाती हैं, निरअहंकारी है। गाते ना भगवान के लिए निरअहंकारी, लेकिन बाबा ने तो यहाँ आकर के निरअहंकारी पने का कितना बड़ा पार्ट बजाया है। बाबा से ऐसे साधारण तन में आते जिसको देख करके कोई कह भी नहीं सकेगा कि भगवान इनको पढ़ाते। बाबा इतने निरहंकारी, बच्चों के साथ बैठते थे, बच्चों को खिलाते थे, हाथ से खिलाते थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बाबा जैसा निरहंकारी तो कोई है ही नहीं ना, तो दुनिया तो जानती नहीं है ना। तो बाबा कहते वे तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं। अब बाबा बता रहे कितना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों में देखा, ब्रह्मा बाबा बिल्कुल निरहंकारी थे। कोई भी कुछ काम करना होगा तो बाबा कहेंगे खुद अपने हाथ से करते थे। और अभी तो क्या होता है, थोड़ा सा भी बाबा के टाइम पर भी कई ऐसे थे, अभी भी बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है तो कहते हमको बहुत है, लेकिन ज्ञान तो बाबा ने दिया ना। तो बाबा कहते इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ तो थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो उनको कितना नशा रहता है, वह है अल्प काल मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है ना, वो लोग तो नशा रखते हैं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। बाबा कहते तुम्हें कौन सा नशा है बताओ, कौन सा नशा होगा बताइए, कौन सा नशा होगा भाई बताएं, बोलो ना। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय फैमिली के हैं, है ना गॉडली स्टूडेंट, ये वो नशा होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तब तुमको इस पढ़ाई का नशा है, तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से क्या हो जाता है बोलो अभी, बाप के साथ योग टूटने से बाबा ने कहा माया का क्या लगता है, कभी बाबा कहते थप्पड़ लगता है, बाबा कहते आज माया का गोला लग जाता है। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाती है, याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कभी कभी कहते ना खुशी गुम हो जाती है, तो बाबा कहते याद करते रहें तो खुशी का पारा चला रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इसके ऊपर और कोई पढ़ाई नहीं, हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ लिया उसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना। तो बाबा कहते ये भी हाईएस्ट पढ़ाई, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो समझते बस इसके ऊपर और कोई पढ़ाई नहीं। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई भी पढ़ाई नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण ने पास में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब तो महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। महाराजा महारानी बनाने के लिए, स्वर्ग के लिए, कहते भी हैं कि पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब तो ये बने। वैसे भी लौकिक में कोई अच्छे घर में जन्म लेता है, कोई रॉयल फैमिली में, कोई ऐसे महान जगह जन्म लेते हैं तो क्या कहेंगे, किसने जरूर पास्ट में अच्छे कर्म किए तब तो ऐसे बने। बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे बनते हो, तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। देखो राज समझो, स्वर्ग में राज्य करेंगे या स्वर्ग में विराजमान होंगे। राज्य करने वाला एक, लेकिन हम सब सुख स्वर्ग के सुख भोगने वाले होंगे या स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है। बाबा आया है राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएंगे। 21 जन्म पालना करेंगे, 63 जन्म दुख भोगा है, वे सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते। हमारी राजाई कहाँ चली गई, बाबा कहते जब रावण राज्य आया पतित हो गए तो सारी राजाई चली गई। रावण राज्य शुरू होने से तुम फिर पतित बन जाते। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने ही पहले बाबा ने दो बातें की। पहले बाबा ने कहा तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो, फिर अभी बाबा बार बार बता रहे तुम बच्चों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी बार बार समझाया जाता है कि तुमने ही 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब फिर से अपना वर्षा लेना। बाबा याद करा रहे तुम क्या थे, क्या से क्या बन गए, अब फिर से अब वैसा बनना है, अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना, जैसे अज्ञान काल में लोग कहते ना मुक्ति में बैठ जाए, यहाँ भी कई बच्चे सोचते होंगे मुक्ति धाम में बैठ जाए। जो बाबा के बच्चे बने कितना भी के मुक्ति धाम में बैठे, बैठने जाएंगे, हाथ लगाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, पिछल पड़ेंगे, बैठ नहीं सकते वो। तो बाबा कहते हैं तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुम्हारा तो क्या है ऑल राउंड पार्ट। तो आज क्या टाइटल मिला, ऑल राउंड पार्ट सारे, तुम्हारा तो ऑल राउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते। अब कुछ ऐसी आत्माएं हैं वो सारा कल्प मुक्ति धाम में रहती है। उस दिन भी बाबा ने बताया ना, आती है एक जन्म के लिए जैसे मच्छरों सदृश आए और गए। ऐसे भी बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ से तो आने से तो मुक्ति धाम अच्छा, पर आना जरूर है कुछ भी करें। ऐसे तो नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और गया। मच्छर होते हैं ना रात के टाइम लाइट जलते आते हैं और सुबह देखो तो ढेर पड़े रहते हैं, तो मरे हुए जाते हैं। तो ये तो ऐसा हो गया, मच्छरों से दृश्य हो गया, आया और ये गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है, ये मंदिर किसके हैं जो शुरू से लेकर के पार्ट बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार क्या है, जो लास्ट में आते उनकी महिमा होती, कोई यादगार नहीं होता, कोई मंदिर नहीं होते, कोई पूजा नहीं होते। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में जो आते उन्हों का यादगार है क्या, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती पार्ट तुम बजाते हो। बाबा नशा चढ़ा रहे कि तुम्हारा यादगार भी है, सबसे जास्ती पार्ट तुम बजाते हो। तुम अपने प्रारब्ध का टाइम पूरा कर फिर भक्ति मार्ग में आते, पार्ट भी बड़ा फिर प्रारब्ध पूरा करके भक्ति मार्ग में आके भक्ति भी बहुत करते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति किया उसकी निशानी क्या है, वो बाबा के ज्ञान में फास्ट जाएंगे, बाबा को पहचान लेंगे, बाबा को देखते ही उनको लगे बस यही मेरा बाबा है। तो बाबा कहते हैं तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा का मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उनका धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो, बाबा को भी जानते, 84 जन्मों को भी जानते, हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानते और धर्म वालों का भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है, पहले हम स्वर्ग में आते हैं फिर उतरते कैसे। बाबा ने सीढ़ी बनवाई थी, उसमें बहुत सारे करेक्शन किए थे, अब तो सीढ़ी भी बहुत सुंदर बनाते हैं। सीढ़ी का भी ट्रांसलाइट म्यूजियम में बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं पहले तुम स्वर्ग में आते हो फिर उतरते कैसे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिलते हैं। हर एक में जन्म में नाम भी अलग होगा, मित्र संबंधी भी अलग होंगे, रूप भी अलग होगा, सब कुछ होगा। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही मुंडा हुआ है, ये बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, जो 84 जन्म ले शूद्र बने, शूद्र से अभी फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवी देवता बनते। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ क्या है कि हम सो देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण सो देवता बनते। वास्तव में हम सो का अर्थ ये है, वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना, बाबा कहते बाबा क्या स्पष्ट करते हैं और वो क्या कह देते हैं, रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो, तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, शास्त्रों में कहानी बताते ना कि दोनों कौरव पांडव भाई भाई थे, और फिर दिन को लड़ते रात को साथ में बैठ के खाते थे। तो बाबा कहते हैं, कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं तो कैसे ले जाएंगे, घर का तो किसको पता नहीं है। वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, सो घर थोड़ी ठहरा। पहले भी बाबा ने बताया था कि अगर आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती तो घर नहीं रहा ना। तो बाबा कहते हैं तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्ची जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकारी वर्ल्ड में कैसे रहते हैं, बिंदी मिसल निवास कर। निराकारी वर्ल्ड में चारों तरफ झाड़ देखो ना, बिंदी बिंदी कितनी सुंदर चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्ची जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकारी वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करती हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का झाड़ है, यहाँ अनेक धर्मों का झाड़ है, और वहाँ पर मुक्ति धाम में निराकारी झाड़ है। ये ड्रामा बना हुआ है, बीज और झाड़ को जानना है। इनका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप बाप है। कितना वैरायटी है, ऐसे झाड़ तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक ही अलग अलग प्रकार के झाड़ होते हैं, झाड़ में तो देखो कितने धर्म, कितने मनुष्य आत्मा है, कितने मठ पंत है। तो बाबा कहते हैं कितना वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। फिर यहाँ भी एक दूसरे की शक्ल ना मिले दूसरे, कितना भी कहो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, लेकिन हर एक की शक्ल अलग अलग, हर देश के लोगों की शक्ल अलग, हर स्टेट के लोगों की भी अलग होती है। पर फैमिली में भी फीचर्स बल मिलते हैं, लेकिन शक्ल तो पूरी नहीं मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक की शक्ल ना मिले दूसरे से। ये ड्रामा भी बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्ट्रेस है, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। ये मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद है। तो बाबा बता रहे हैं ये मांडवा है, खेल का स्थान है, रोशनी के लिए ये सब तत्व है। रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि हैं। ये कोई देवता थोड़ी है, ये तो बत्तियां हैं। फिर बाबा कहते क्यों इसकी पूजा करते, क्योंकि वो सुख देते रोशनी देते ना, ये कोई देवता थोड़ी है, ये तो बत्तियां हैं। परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह दे। कोई मनुष्य किसको सुख देता ना तो क्या कहेंगे, ये तुम्हारे लिए जैसे कि फरिश्ता और देवता है। सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह देते। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते। देवताएं क्या करते, खाओ पियो मौज करो आराम से रहो घूमो फिरो 36-56 प्रकार का भोजन खाओ, यही करेंगे ना। सतयुग में, सतयुग में माताएं क्या करेंगे हैं, कितने प्रकार का भोजन बनाएंगे माताएं, हाथ खड़ो बट्टी की, कितने प्रकार का भोजन बनाएंगे बताओ, कितने, 11-21, जो 11 प्रकार का बनाएंगे हाथ खड़ा करो, कोई नहीं, 21, 51 और 108। अरे बोलो हम तो खाएंगे क्या बनाएंगे हैं? बोलो ना, हम तो खाने वाले हैं, लेकिन नेचुरल सब कुछ मिलता है, खाना पीना आराम से मिलेगा, वहां तो महलों में रहेंगे। आपका महल कितना बड़ा होगा बताओ? लुधियाना जितना चाहिए? जिनको लुधियाना जितना चाहिए वो हाथ खड़ा कर दे। हैं? यहाँ है कितना बड़ा चाहिए? है पूरा पंजाब चाहिए? इतना महल चाहिए? बोलो पूरा विश्व हमारा महल है, बात ही खत्म है। तो बाबा कहते हैं ये देवताएं थोड़ी है, वह तो बत्तियां हैं परंतु सर्विस करते हैं, इसलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवता कोई सर्विस नहीं करते, खाओ पियो आराम से रहो। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो, बाप ऑबिडेंट सर्वेंट है। अरे बताओ, बाबा ऐसे कहते हैं? बाबा कहते हैं, एक तरफ बाबा ने कहा मैं निरअहंकारी सर्वेंट हूँ, फिर आज बाबा कह रहे हैं बाबा ओबिडेंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान और नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। अभी क्या हम बाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई तंग करता है ना तो कहते माथा नहीं खपाओ है। तो ये प्रकृति भी नहीं मात तंग करती थी और शरीर भी तंग नहीं करता, तो यहाँ तो सब कुछ तंग करता है। कभी शरीर तंग करता है, कभी प्रकृति तंग करती है, कभी संबंधी तंग करते हैं, कभी कुछ न कुछ अचानक घटनाएं हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं माथा नहीं खपाते थे, आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते हैं। ये राज बेहद का बाप ही समझाते हैं, दुख में बाप को ही पुकारते रहते। कहते ना दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में कोई सिमरन करे तो दुख काहे को, लेकिन वहां तो सुख में करते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता हे सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की अब खुद नशा चढ़ा रहे, क्या नशा चढ़ा रहे याद है क्या बोला होगा बाबा ने? अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते। भर गई ना झोली? झोली में कोई छेद तो नहीं है ना? कभी कभी झोली भर जाती है ना तो फिर छेद का बहुत भारी होता, छेद हो जाता है, अहंकार आएगा तो छेद हो जाएगा, लेकिन अहंकार नहीं है तो झोली भरती जाएगी। तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? देखा कोई ऐसा बाप? इतना धन दे, इतना धन दे। कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ की सौगात ले आया हूँ, तुम्ही तो स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। दुनिया में कई पवित्र रहते हैं लेकिन बाबा कहते हैं जो हर प्रकार के विकारों में नहीं जाते उनको पावन का पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी और इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहती हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता बनना। पुरुषार्थ करना यहाँ संपन्न बनने का, फिर जाकर के बनेंगे संपूर्ण निर्विकारी देवता। तो बाबा कहते हैं बाप कहते तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। संपूर्ण निर्विकारी देवता पद कैसे मिलेगा? बाप को याद करने से अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भाव मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं क्या होगा, जिससे तुम्हारे पाप भस्म होंगे। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। तो लास्ट में बाबा ने क्या बताया, मन मना भव मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करो तो पाप दग्ध होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। आज का वरदान स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मों से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती। बाबा कहते बिजी रहेंगे तो माया को चांस नहीं मिलेगा, तो बाबा कह रहे हैं जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्म से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाए। इसलिए क्या करना है, इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन निश्चय और फलक से कहो, क्या कहो, निश्चय और फलक से कहो कि बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। क्या कहना वे बोलो फिर से, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकते। तो आज का व्यक्ति इशारा टाइटल चल रहा है सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ सहनशील बनो। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखनी चाहते हैं। अगर आवेशता व थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो लेकिन मेरा जो गुण है वही मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हूँ बहू, वही गुण वही कर्तव्य वही बोल वही संकल्प अनुभव हो सभी के मुख से निकले ये तो वही लगते हैं अच्छा ओम शांति। अभी एक दो अनाउंसमेंट है, सब सुनेंगे। मधुबन के सभी ट्रायल के भाई बहने ध्यान देंगे। ट्रायल के जो सभी भाई बहने हैं वह आज प्रातः 10:30 बजे तक शांति वन में दादीस मीटिंग हॉल में पहुंचेंगे, मुन्नी बहन मिलेगी और उन्हें वस्त्र आदि देंगे। और दूसरी बात है, आपको मालूम है आजकल कहां कहां पर कुछ न कुछ कोई न कोई घटनाएं घट जाती हैं। जैसे कुछ समय पहले ही दिल्ली भी होटल में कहां पर आग लगी थी, तो सरकार इस बात के लिए बहुत ध्यान रखती है कि जो साधन बनाए जाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रीति से हो और सेफ्टी के लिए हो। जैसा कि आपको मालूम है दिल्ली जोधपुर जयपुर सिरोही में कई स्थानों पर आग लगने के कारण काफी दुर्घटनाएं हो गई है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर राजस्थान में भी और माउंट आबू में प्रशासन भी इस बात का ध्यान रख रहा है। तो वो भी देखते हैं कि पूरे आबू के अंदर बहुत होटल है, बहुत से स्थान है, वहां पर फायर सेफ्टी का जो सिस्टम है ठीक है या नहीं है। लेकिन पांडव भवन अपने सभी स्थानों पर फायर सेफ्टी का सिस्टम बहुत एक्यूरेट रखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से, लेकिन ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो फायर सेफ्टी का काम देखते हैं हमारे शांतिवन में रमेश भाई देखते हैं, वो आते रहते हैं, बीच बीच में उनका ग्रुप भी चेक करता है। तो उनका विचार था कि एक बार डेमो दिया जाए, एक बार प्रैक्टिकल में प्रेजेंटेशन दे। तो आज वो दिन को आएंगे तो सभी डिपार्टमेंट के इंचार्ज, उनके साथी इंचार्ज प्रातः 11 बजे वहाँ पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में बैठे, पहले उनको बताया जाएगा, फिर उसके बाद पहले मेडिटेशन हॉल में प्रोजेक्टर शो के द्वारा उनको बताएंगे, फिर उसके बाद ओम शांति भवन के बाहर नीचे जो है ना, जैसे गेट का एंटर करते बीच में जो जगह है वहां पर डेमो प्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसलिए सभी डिपार्टमेंट के इंचार्ज, उनके साथी, सभी भवनों के इंचार्ज, क्योंकि सभी भवन में फायर सेफ्टी के साधन तो लगाए हुए हैं, ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसको और एक्यूरेट करना है और समय पर उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए ये डेमो प्रेजेंटेशन आज किया जाएगा, जिसमें ज्ञान सो के भी डिपार्टमेंट के इंचार्ज भाई बहने यहाँ पर आएंगे। अभी फिर से बता रहे हैं, वो तो ऐसे बोर्ड पे लिख दिया है, ट्रायल वाले सभी भाई बहने अपने साथ अपना जो ट्रायल कार्ड है वह भी साथ में लेके जाएंगे। अच्छा, बट्टी के भाई बहने जो आज आ रहे, कुछ तो उठ गए, जो आज जा रहे हैं हाथ खड़ा।